मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 30 मार्च 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं राज लक्ष्मी सिकरवार, जो अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं, आनंद सुभाष चंद्र पांडे, आप मुंबई से हैं, विकास कुमार, आप श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं, अनामिका कुमारी, आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, और राम लल्लू शाह, आप सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं। तो राजलक्ष्मी, आनंद, विकास, अनामिका और राम लल्लू, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, एक बहुत लंबे गैप के बाद मैं अब अपने अक्टूबर नवंबर बैच के रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा, उन्हें संबोधित करना चाहूंगा, अपनी एक छोटी सी राय देना चाहूंगा कि देखिए, अक्टूबर नवंबर अभी आपको बहुत दूर मालूम पड़ रहा होगा कि अभी तो मार्च ही खत्म होने को है, बहुत वक्त बाकी है। वक्त बाकी नहीं है, वक्त बीतते वक्त नहीं लगता है। मित्रों, बहुत जल्दी अक्टूबर भी आ जाएगा। और प्लीज, अब चूंकि आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं एक कोई न कोई रिश्ता, चाहे वो पतले से धागे का ही क्यों न हो, एकेडमिक से आपका जुड़ चुका है, जो अलग तरीके का रिश्ता है। वैसे तो एकेडमी से आप उन सभी मित्रों का रिश्ता है जो डेली ऑडियो को सुनते हैं या जो afis.com के प्रति अपनी सद्भावना रखते हैं, इसके बारे में लोगों को सूचना देते हैं, बताते हैं, वो सब के सब एकेडमी से जुड़े हुए टीम है, वो सब के सब हमारे अपने एकेडमी परिवार के अंग हैं। लेकिन बट नेचुरल है कि चूंकि आप 15 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप थोड़े से अलग तरीके से जुड़ना चाह रहे हैं, यही आपकी चाहत है। तो दोस्तों, आपकी चाहत को एकेडमी अच्छी तरह से पूरा कर सके, आपको भी उसका पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए बहुत जरूरी है अभी एक शुरुआत आपको करनी होगी, और वो यह कि आप अक्टूबर नवंबर की प्रतीक्षा मत करें। ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है, और यदि आपके लिए संभव हो तो लाइफ मैनेजमेंट भी, यह आपके डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। इससे आपके मस्तिष्क की एक अलग पृष्ठभूमि तैयार होगी, आपके सोचने समझने की एक अलग किस्म की रंगत बनेगी, और सच पूछिए तो आप देखेंगे कि आपका एक अलग तरीके का व्यक्तित्व धीरे धीरे इमर्ज होने लगेगा, और उसका बहुत बड़ा लाभ आपको तब दिखाई देगा जब आप 15 दिन की क्लासेस के लिए यहां आएंगे। इसलिए मैं समझता हूं, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं और आप इजाजत दें, कि जो लाइफ मैनेजमेंट और जो डेली ऑडियो लेक्चर है, ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए एक तरह से मैंडेटरी जैसा है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर। दोस्तों, दूरदर्शन की न्यूज आप लोगों ने सुननी शुरू कर दी है, जैसा कि आप लोगों के मेल से मुझे पता लग रहा है। और कल मैंने आप लोगों से ये सुझाव मांगा था कि क्या दूरदर्शन की न्यूज को हम किसी और दूसरे पैटर्न पर सुन सकते हैं, तो मुझे बहुत से मेल मिले हैं जिसमें उन्होंने अपने अपने उपाय बताए हैं, और उसमें से 2-3 ही उपाय हैं और सब उपाय लगभग लोगों के रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं जिन भी स्टूडेंट्स ने इतनी तत्परता के साथ मुझे इसके बारे में सूचित किया है, उन सब के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आभार और धन्यवाद एक औपचारिकता नहीं है, कम से कम मेरे लिए नहीं है। मित्रों, उसके पीछे 2 कारण है। पहला तो यह है कि आप लोगों ने यह महसूस किया कि नहीं, यदि किसी एक की समस्या है, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझसे यह जानना चाहता, अगर किसी 1-2 की भी समस्या है तो हमारी खुद की समस्या है और हमें उसके निदान की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप लोगों ने मेल लिखा। और दूसरी बात है कि चूंकि सर ने कहा है तो आप लोगों ने तुरंत मेल लिखा, उसे टाला नहीं कि ठीक है कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे। मेरे पास व्हाट्सएप में भी कुछ आ गई सूचनाएं, 1-2 स्टूडेंट्स ने फोन पर भी बताया, फिर मेल की तो संख्या ही बहुत सारी थी और सबने सुझाया कि किस तरीके से डीडी न्यूज को सुना जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं मित्रों कि जो मेरे पास सुझाव आए हैं और खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे जिन्हें ये समस्या लग रही थी। जो सबसे जो आसान रास्ता स्टूडेंट्स ने सुझाया है, आप सब ने सुझाया, उसमें यह है कि अगर वो प्ले स्टोर में चले जाए, स्मार्टफोन वगैरह जो भी होता है प्ले स्टोर में चले जाए, तो वहां जाकर के आप बड़े आराम से डीडी न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर जब भी चाहे आप सुन लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी सुझाया कि जो जियो प्ले ऐप है उस पर डीडी न्यूज नाइट को रिकॉर्ड करके और उसे फिर आप कभी भी सुन सकते हैं। और तीसरा YouTube पर भी ये अवेलेबल होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने सुझावों के साथ साथ ये भी लिखा कि जो प्ले स्टोर में जाकर के अगर डीडी न्यूज का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है और सबसे सुविधाजनक भी आगे सुनने के लिए। तो दोस्तों ये तीन उपाय हैं, आप लोग इसे ऐप लोड करके सुनना शुरू कर दें। और ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं लेकिन मेरा उतना जोर नहीं था, लेकिन अब डीडी न्यूज में मैं देख रहा हूं कि कुछ समय से उसके स्वरूप में परिवर्तन आया है, टाइमिंग्स भी उसके बढ़े हैं और उसके स्वरूप में भी चेंजेस आए हैं। और ये जो चेंजेस हैं सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, बहुत उपयोगी चेंजेस हैं। तो मित्रों इसके लिए आपको समय निकालना ही चाहिए। चलिए अभी आपके पास एक तर्क था कि उस समय तो मैं ट्रेवल करता हूं या नौकरी करता रहता हूं या फलाना है और समय सूट नहीं कर रहा है, लेकिन अब तो ईश्वर की कृपा से वो बहाना भी खत्म हो गया। मैं बहाना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो समस्या थी तो वो समस्या भी अब खत्म हो गई है। तो दोस्तों आप लोगों ने कल की भी डीडी न्यूज सुनी होगी, देखी होगी, आकाशवाणी की भी न्यूज सुनी होगी, देखी होगी, तो देखा आपने पाया होगा कि बहुत से न्यूज तो मैच करती है क्योंकि दोनों ही ऑफिशियल मीडिया हैं और जो इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज होती है वो तो चाहे आप प्राइवेट चैनल सुन लें, देख लें या अखबार पढ़ लें, अखबार तो सारे प्राइवेट ही हैं तो वो सब एक जैसे होते ही हैं, लेकिन फिर भी उसमें उसके प्रेजेंटेशन में फर्क होता है और वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। आपने देखा कि चाहे वो रेडियो न्यूज हो या डीडी न्यूज हो उसमें आपने जीएसटी के बारे में विस्तार से सुना और दूरदर्शन के न्यूज में जीएसटी को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत भी किया गया, बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया। आपने ध्यान दिया होगा कि चार कौन कौन से बिल लोकसभा में अभी है पारित होने हैं वो बाकायदे बताए गए, वो क्यों चार बिल अलग अलग हैं वो भी बताएगा, जिसके बारे में दो तीन दिन पहले मैं ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुका हूं। फिर बकायदे उसमें ये बताए गए कि जो दरें होंगी जीएसटी की वो कौन सी होंगी, 0% जो खाद्य वस्तुएं होंगी उनमें 0% होगा, पर होगा ही नहीं मतलब समझ लीजिए। फिर उन्होंने बकायदे स्लैब बताए 5, 12, 18, 28 की, और फिर बताए 40 तक वो जा सकता है, वो अभी रिजर्व में है। इसके बाद उन्होंने क्षतिपूर्ति के बारे में बताया और फिर ये भी बताया कि इससे क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या लाभ होंगे, कैसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ सकता है, कैसे हमारी जो जीडीपी है 1 से 2% तक अधिक हो सकता है। इसके बाद बकायदे एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जो एक भट्टाचार्य जी थे और उन एक्सपर्ट से बातें की गई, उन्होंने फिर अपने व्यूज रखे। तो आपको नहीं लगता है फ्रेंड्स कि अगर सच में जीएसटी के बारे में आप ये काफी लंबा डीडी में काफी लंबे समय तक ये चला था, अगर आप केवल सुन लेते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि फिर आपका सिविल सर्विस के लिए तो एटलीस्ट चैप्टर पूरा हो गया। और मैं ये सही नहीं कह रहा हूं, चैप्टर पूरा हो गया, उसके एप्रीहेंशन हैं कि इससे क्या क्या आशंकाएं हैं, उस एप्रीहेंशन के बारे में भी उस न्यूज में था, ध्यान दिया होगा जो लोकसभा में डिबेट चल रही थी इसको लेकर के, तो सभी पार्टीज अपने अपने एप्रीहेंशन रख रहे थे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आपको उसके फायदे भी पता लग गए, उसके नुकसान भी पता लग गए, उसका सिस्टम भी पता लग गया, आपका तैयार हो गया। तो मित्रों इस लिहाज से डीडी न्यूज ने अब एक बहुत अच्छा परिवर्तन किया है और आपको इस परिवर्तन का लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद फिर आपने दूसरा ही देखा होगा वो आयोग को लेकर के था, पिछड़े वर्ग आयोग को लेकर के, तो इस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं तो इसीलिए वहां उसे दोहराने की जरूरत यहां बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स एक जो इम्पोर्टेंट खबर और थी वो है एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर, मैं कहूंगा इम्पोर्टेंट खबर नहीं, जो अभी तो दिखने में छोटी सी लग रही है लेकिन आप उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जिसके तहत उन्होंने BS3 तक के मानक के जो ऑटो वगैरह हैं इसकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब आज भर उसकी और बिक्री हो सकती है, पूरी तरह से वो प्रतिबंधित कर दिया गया, या पता नहीं आज भी बिक्री हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो और उसमें जो उनका कमेंट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमेंट में उन्होंने क्या कहा कि किसी भी कंपनी को लोगों के स्वास्थ्य के आधार पर लाभ कमाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, या यूं कह लीजिए कि कंपनियों के फायदे के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता। यानी कि अगर इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा करके देखें तो आर्थिक विकास व्यक्ति के स्वास्थ्य की कीमत पर या व्यक्ति के जीवन की कीमत पर आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, यहां कंपनी है, कंपनी एक उद्योगपति की या उद्योगपतियों के समूह की होगी, आर्थिक विकास पूरे देश का होता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य की कीमत पर आर्थिक विकास होता है तो उस देश में रहने वाले लोगों का अर्थ ही फिर क्या आएगा, स्वास्थ्य ही खराब है तो। ये जो कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, दोस्तों आपको चाहिए कि इसे बकायदे नोट कर लें उन्होंने क्या कहा, आज के अखबारों में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और इसके बाद ये भी अच्छा होगा कि किस डिसीजन के तहत इसको कहा है ना, क्योंकि BS3 मानक की वो बात कर रहे हैं तो ये प्रदूषण के संबंध में है। देखिए, उनकी गाड़ी से उनकी दुश्मनी नहीं है कि गाड़ी क्यों चला रहे हैं या सड़कों पर भीड़ भाड़ हो रही है तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनका तो जो वास्ता है वो इस बात से है कि BS3 के मानक तक की जो गाड़ियां, देखिए BS का मतलब है भारत स्टेज, आपको अखबारों में मिला होगा भारत स्टेज 3, ये मानक है। धीरे 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 गाड़ियों की टेक्नोलॉजी को इस तरीके से किया जा रहा है कि उनसे जो गैसेज निकलती हैं, जो बहुत ही हानिकारक गैसेज होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, सल्फर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे, तो ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये जो स्टेजेज हैं BS, अभी हम BS3 की बात कर रहे हैं, अब BS4 शुरू हो जाएगा, भारत 2020 तक BS6 पर जाने वाला है, BS5 के बारे में उसने साइन नहीं किया, और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन का हिस्सा है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा है, क्योंकि पर्यावरण केवल एक देश की समस्या नहीं है, ये दुनिया की समस्या हो गई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत पहले कह दिया गया था कंपनियों को कि आपको लागू करना है और वो नहीं कर रहे हैं, तो ये कंपनियों का एक फेलियर है। तो दोस्तों, ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, एक सामाजिक विकास की दृष्टि से, आर्थिक और सामाजिक विकास के समानांतर कैसे चलना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसका इस्तेमाल कितने तरीके से कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। इसके बाद फिर ये खबर रेडियो में थी और हो सकता है कि दूरदर्शन पर भी रही हो, खैर देखिए हमारे लिए मित्रों ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी खबर दूरदर्शन में है, कौन सी खबर रेडियो पर थी। अगर मैं इसमें कहीं आगे पीछे भी हो जाऊं बोलते समय, हालांकि मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है कि किस पर थी, इम्पोर्टेंट तो यही है कि वह थी। तो अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो आप उसे मर्ज करके चलिएगा, क्योंकि दैट इज ए मटेरियल। प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसदों से कहा है कि जो भी सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। सोशल मीडिया आपके सिलेबस में है, और इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा, आप सभी मुझे ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि आप लोग तो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। तो ये एक अच्छा एक इश्यू है, आपको इसमें केवल ये देखना है कि सोशल मीडिया का जो रोल है पॉजिटिव तो है ही, लेकिन कैसे अब एक नेगेटिव तरीके से भी ये काम करने लगा है, किसका एक नेगेटिव रोल भी हो गया है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। और इसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि इस पर जब हम नियंत्रण की बात करते हैं तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आड़े आ जाती है, और अगर आप इसको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अफवाह फैलाई जाती है, किस तरीके से और दूसरी बातें होती हैं, तो कैसे एक संतुलन स्थापित किया जाए। और ये जो सोशल मीडिया है ये केवल भारत के लिए ही चैलेंज नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है, ताकत भी है और इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। तो जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में जब कभी भी आपको कहीं कुछ भी पढ़ने को मिलता है तो प्लीज उस पर आप पूरा का पूरा ध्यान दें। मित्रों, अब मैं अखबारों पर आता हूं और अखबारों की दो खबरों की मैं चर्चा करना चाहूंगा स्पेशली। थोड़ा सा ये मैं इस दृष्टि से कर रहा हूं कि अखबारों से कैसे आप कुछ चीजें निकालकर अपने को विशिष्ट बना सकते हैं। देखिए, जो सिविल सर्विस की तैयारी है ये परीक्षा नहीं है, ये कंपटीशन है। इसके अंतर को तो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी चाहिए। परीक्षा और कंपटीशन में क्या फर्क है? कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, अगर आपको परीक्षा शब्द से मोह ही है तो आप उसके आगे उस कॉम्पिटिशन लगा दीजिए। यहां तो यह कि जो फर्स्ट जितने भी पोस्ट हैं उस बेस्ड ले लिए जाएंगे। परीक्षा यह कि 100% लोग भी पास हो सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां तो इनको जितने चाहिए उतनों का सिलेक्शन होना है। इसका मतलब है कि आपको केवल एक निर्धारित मार्क्स ही नहीं लाने हैं, बल्कि दूसरों से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। दूसरों से ज्यादा कैसे आप मार्क्स लाएंगे? देखिए, सभी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लोग पता नहीं कब कब से तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास किताबें हैं, नोट्स हैं, कोचिंग है, सभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो आपको देखना यह होता है कि आप अपने आंसर में कुछ विशिष्टता कैसे ला सकते हैं। उस विशिष्टता की तलाश, सच पूछे तो, सिविल सर्विस में दूसरों से आगे निकल जाने का एक मंत्र है। इनफैक्ट एक मत, और विशिष्टता का मतलब ये नहीं कि आप 200 शब्दों का कोई उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें 200 शब्द विशिष्ट हैं या आपके 100 शब्द विशिष्ट हैं, नॉट एट ऑल। पता लगा कि उसमें एकाध फैक्ट विशिष्ट है, बस उसी को लिखिए, अंडरलाइन कर दीजिए, एग्जामिनर के लिए पर्याप्त है, वो आपको उस एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। अखबारों में ऐसी चीजें होती हैं, या यूं कह लीजिए कि अखबारों में तो होती ही हैं, आप पढ़ते भी हैं लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते, या समझते भी हैं याद भी रहता है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये संकट आता है। जैसे मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं कि अभी आधार कार्ड को लेकर देखिए कि खूब सारी चर्चा हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, बेंच में जाएगा, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा जो मामला उठ रहा है आधार कार्ड का, दो को लेकर के दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आधार कार्ड को लेकर के जितने भी डिबेट्स हैं उस डिबेट के सेंटर में क्या है, दो पॉइंट है। नंबर वन, इसकी सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन, प्राइवेसी कह लीजिए, और दूसरा यह है कि जो वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम है उसके लिए इसे अनिवार्य किया जाए या न किया जाए, ये दो इश्यूज हैं, राइट। अब आप देखिए कि जब मान लीजिए कि प्राइवेसी पर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो अब आप लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, लेकिन अखबार में आज ही आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से जो हमारे एमएस धोनी हैं उनका जो आधार नंबर वगैरह था वो लीक हो गया। उसको लेकर के सरकार ने स्टेप भी उठाया है कि जो कंपनी थी जो जिसके माध्यम से लीक हुआ है उसको 10 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। तो अब देखिए कि ये एक छोटी सी घटना है, एक रोचक घटना भी है, और ये आपके दिमाग में दर्ज भी है, क्योंकि जहां धोनी है तो उनसे जुड़ी हुई घटना तो ऑटोमेटिक सबके लिए रोचक होती है, उसको पढ़ते भी हैं, हमें याद भी रहता है क्योंकि भूलने वाली चीज भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वो अखबार में भी है, आपको याद भी है, मालूम भी है, लेकिन अब इस्तेमाल की बात। तो जब प्राइवेसी पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं तो वो आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। अदरवाइज तो लोग तर्क वितर्क, कानून, संविधान और इन सब की ही बात करेंगे। आप थोड़ा सा उसको जनरलाइज कर दीजिए तो दूसरों से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स, आज के अखबारों में एक मुझे डेटा मिला कि जो हमारे देश में अभी 524 फास्ट ट्रैक कोर्ट, आप जल्दी से जल्दी मामले को निपटाइए। और इसको लेकर के हमारे जो विधि आयोग है उसने कहा है कि हमारे देश में अभी 1400 फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। मतलब विधि आयोग भी ये चाह रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो तो मामला जल्दी से जल्दी निपटे। इसका मतलब है कि अब हमारे यहां न्याय तेज तीव्र गति से मिले लोगों को, इसकी तरफ सोचा जाना शुरू हो गया है। और फिर आप देखेंगे कि आज के आप प्रेस क्लिपिंग्स में आप देखेंगे कि जो न्यायालय है उनमें सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाने की बात हो रही, तो उस पर बहुत से क्लिपिंग्स हैं, वो आप लोग पढ़ लेंगे, बाद में हम लोग कभी उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से आप ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के संदर्भ में सिविल सर्विस के लिहाज से मैं आप कह रहा हूं, तो ये डेटा है, एक है 524 हमारे पास अभी है, विधि आयोग ने 1800 का रिकमेंड किया, तो उस हिसाब से तो हमारे पास केवल 40% भी नहीं है, 35% ही है। तो एक आपको एनालिसिस करने के लिए एक तर्क मिल गया। तो कुछ इस तरह की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही इस तरह के नोट की जानी चाहिए, नहीं तो पता लगा कि आपके पास इतना सारा जंगल इकट्ठा हो गया कि उसमें से रास्ता ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अब काफी वक्त हो चुका है, प्रेस क्लिपिंग्स मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर ही रहा हूं, वो आप लोग अपने ढंग से देख लेंगे। अब मैं ईमेल पर आता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और इन्हीं में से कुछ नौजवान साथियों के नाम हैं, अजय कुमार सागर, भोगेश पाटिल गुलबर्गा कर्नाटक से, मलय बारूपाल, अनुज कुमार, सत्येंद्र कुमार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, नीलकमल यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, शशांक शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से, निशांत बेज बरुआ असम से, दीपक कुमार, सैयद मोहम्मद अब्बास लखनऊ से, कैफी रहमान, सोमेश नागर अजमेर राजस्थान से, जतिन अंकित राय, प्रशांत मनावी राजकोट राजस्थान से, घनश्याम और पिंटू कुमार पटेल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से। तो मित्रों आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।